کیا ہے، میاں کا نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والے ہے، کون ہے؟ ایک بار کہا، دو بار کہا، اور لوکس ان کے منہ کی طرف میں دیکھ رہے ہیں، کوئی اتر نہیں دے رہے. بولو بولو تو تمہارے پتا جی کا نام کیا ہے، کون ونش کے تم لڑکے؟ انہوں نے کہا جی آپ ودوان ہیں، سب شاستروں کو جانتے ہیں، آپ کے گرو جی وشیشٹھ جی بھی ہیں، آپ بڑے بڑے ودوان سب معلوم پڑتے ہیں اور بدھیمان بھی ہیں، آپ کیا یہ نہیں جانتے جی برہمچاریوں کے پتا جی کا پریچے نہیں پوچھا جاتا، میا کا پریچے اور دیش کا پریچے نہیں پوچھا جاتا، ان کا پریچے بس یہی ہے کہ گرو جی کون ہیں، ہمارے گرو جی والمیکی جی ہیں، میں ان کا اترکت اور کسی کو نہیں جانتا، انہوں نے ہم کو پالا پوسا اور بڑا کیا ہے اور میں انہی کا میں شیشیہ ہوں. لکشمن جی سن کر کے آشچرچ چکت رہ گئے، ان کے پاس میں کوئی اور اتر نہیں تھا. بات ٹھیک تھی. آج کل ہم لوگوں سے لوگ پوچھتے ہیں، ہم سے کتنے لوگوں نے پوچھا ہوگا، مہاراج جی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کے پتا جی ابھی ہیں یا میا ہیں؟ ان بچوں کو دیکھ کر کے بڑے لاڈ پیار سے دیکھتے ہیں کہ بھولے بھالے سندر سکانت بچے، کہتے ہیں کہ ارے بیٹے تمہارے پتا جی کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، میا کے تم کہاں کے رہنے والے، وواہ ہوئی تھی، تمہاری استری پتنی ہیں، بیٹے ہیں؟ یہ پوچھ سادھو سنتوں سے، برہمچاریوں سے کدابھی مت پوچھو، نہیں تو اپرادھ لگ جائے گا، ان سے گیان کی باتیں سنو، پوچھو ادھک سے ادھک ان کے گرو کا نام تم لوگ پوچھ سکتے ہو. وہ چپ نروتر ہو گئے. انت میں انہوں نے دیکھا اور سبھا کے لوگوں نے دیکھا، یہ دونوں جو لڑکے ہیں یہ ٹھیک رام کے روپ سے ملتے جلتے ہیں. اس سمے رام کی آیو تھی 11,000 برس، 2-4 برس کم، اور ان کی آیو تھی کتنی، ابھی 8-9 برس کی، کنتو رام چندر جی سب سمے 16 برس کے کشور، وہ کبھی بھی بوڑھے اور داڑھی بڑی ہوئی اور یہ سب پکے نہیں، نہ گونف آئی بھی، کچھ بھی نہیں، کبھی جوا ہی نہیں ہوئے کشور سے، نتیہ کشور. تو نتیہ کشور 15-16 برس کی اور یہ 8-9 برس کی عمر میں دونوں کے روپ کیسا ریزمبل کرتا ہوگا، کیسا سمان ہوگا، دونوں میں کوئی انتر نہیں. لوگ کہتے ہیں اوہو، وشیش کر کے کوشلیہ میا کریں، رام کا یہ بیٹا، رام کا بیٹا ہوتا نا تو ٹھیک ایسا ہی لگتا، دونوں میں کوئی انتر نہیں، کیول آئی میں تھوڑا سا یہ بڑے یہ چھوٹے. سب سبھا چکت ہو کر کے ایسے ہی پرسپر پرسپر کھانا پوسی کر رہی ہے. لکشمن لال جی سونے کی تھال میں وہ سب رتن ہیرے جواہرات کپڑے لتے سب کچھ ہار اتیادی مکٹ سب لے کر کے ان کے پاس میں گئے اور اس بچے کو دینے لگے لوکس کو. لوکس نے یہ کیا، میں کیا کروں گا، ارے ہم لوگ برہمچاری ہیں، ہمارے باغیچے میں، والمیکی جی کے باغیچے میں ہم پیڑوں کو سنچن کرتے ہیں، وہاں پر آم کیلے امرود یہ سب پرچور روپ میں ہیں، کینت ہیں، کینت ہوتا ہے نا کھٹا میٹھا، بیل ہیں، بیر ہیں، کافی پرچور ہیں، ہم لوگوں کو ان سب سے یہ چیز سے کیا ضرورت. اور کپڑے لتے ہمارے یہاں کیلے کے چھلکے کے بن جاتے ہیں، بس دیکھو نا میں کتنا سندر اسے پہننا، ہم کو اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو آپ کے کھجانے میں رہے اور آپ لوگوں کے پاس میں رہے، ہم کو اس کی کوئی آوشیکتا نہیں ہے، نہ کچھ لیا نہ دیا، بس کہہ کر کے پھر اپنے آشرم میں لوٹ آئے. ان لوگوں نے دیکھا جی ادبھت بالک تھے یہ، جیسا سندر سکانت ہے ایسے سندر گن بھی ہیں اور اتنا تیاگ اور بیراگی اس کے میں، یہ سادھارن لڑکا نہیں ہے. اسی کا ہے گڑگان، اور رام چندر جی کے کتھا کے بدلے میں اسی کا ہی گڑگان ہونے لگا، دن بھر رات بھر جگہ کے سمے میں، باہر میں، بھیتر میں، سب سمے. اب یہ بچے کچھ ولمب ہو گیا آج کتھا میں، اس لیے ولمب سے سیتا میا کے پاس میں، سیتا میا جی دیکھ رہی ہیں ارے بیٹی ابھی آئے نہیں، کہاں رہ گئے، ولمب ہو گیا، بڑی اتسکتا سے گھر کے باہر اور بھیتر دیکھ رہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں یہ بچے آئے، ایک کو انہوں نے بائیں طرف، بائیں جنگھے پر، اور دوسرے کو دائیں گودی میں لوکس کو بیٹھا دیا اور بڑے پیار سے مکھ چمبن کرتے ہوئے اسنیہ کر، بیٹے آج اتنا ولمب کیوں ہو گیا؟ میا اس لیے ولمب ہو گیا، آج بڑی وچتر بات تھی، آج ہم لوگ رامائن کا گان کرنے جا رہے تھے، دیکھا جیسے رام نام کا کوئی راجا अपने सेनाओं और सामंतों भाइयों माओं माँ पिता सबके साथ में पास ही में यज्ञ करा है नैमिषारण्य में। आज हम लोग वहीं पर पहुंच गए और वहीं पर हमने रामायण गान कर दिया वाल्मीकि का ये और दशम सर्ग सब सुनाया। सब लोग देखें बड़े चकित हो रहे, वो जो राजा खुद वो रो रहा था और की तो बात क्या, और उसकी मैया रो रही, उसके भैया रो रहे हैं सभी लोग। और अंत में मैं देखकर के आश्चर्यचकित एक बात को देखकर के रहा, मैया एक बात कहूं? बोलो बेटा। वहां पर एक मूर्ति सोने की मैंने देखा और वो मूर्ति सोने अबिकल तुम्हारे जैसे ही, कोई भी अंतर नहीं, केवल उसमें यही बाकी था जो उठ करके खड़ी होकर के चलती नहीं थी और हाथों को ऐसे वैसे नहीं करती थी, ऐसे मालूम होता था जो साक्षात तुम ही हो। किंतु तुमसे वहां पर उन लोगों से क्या मतलब? मैया उसको देखा हमने और उसी के साथ में सुनते हैं कि वो यज्ञ करता है राजा। मैया सुन करके आंख से आंसू टपके, वो एकदम रोने लगे। बच्चे अपने पीताम्बर से उनका मुख मैया के आंखों पोंछने लगे। मैया तुम रोने क्यों लगी उसकी बात सुन करके, तुमको क्या हो गया, रोने की क्या जरूरत है? और रोने लगी, ये बच्चे भी रोने लग गए। अंत में मैया ने सोचा हमारे प्रियतम ने अपनी प्रियतमा को नहीं छोड़ा, किसको, राजा ने अपनी रानी को छोड़ दिया, ये बात हो सकता है? नहीं, यदि हमको छोड़ा तो हमको अपने हृदय में बसा करके वहां पर हमारी मूर्ति रख करके क्यों पूजा करते? बस एकदम गौरव से उनका हृदय एकदम ये हो गया, विफल हो गया और भी रोने लगे। वाल्मीकि जी को भी पता लगा, उन्होंने आकर के इनको सांत्वना दिया। इस तरह से रामचंद्र जी उनसे कहने, ये ऐसी लीलाएं होंगी? उन्होंने कहा ये ऐसी लीलाएं क्यों होंगी, इस तरह से हमको त्याग करके तुम भी रोओगे और वहां पर हमारी पूजा करोगे, राजभवन में बैठ करके हमारी मूर्ति का, रामचंद्र उन मूर्तियों को अपने राजमहल में रख करके और उनके साथ में वार्तालाप करते हैं और अपने विरह को दबाते हैं, उनकी पूजा अपने हाथों से सीता जी की पूजा आराधना करते हैं। मैंने कहा जी ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हमको इस प्रकार से इस जन्म में भी उस जन्म में और इस प्रकार से छोड़ेंगे और त्याग करेंगे? मैंने कहा जी इसी जन्म में नहीं, और बीच में हमारा एक और जन्म होगा, उस समय मैं कृष्ण होऊंगा और तुम होगी राधा, और उस समय में हम लोग 10 वर्ष तक बड़े प्रेम के साथ में रहेंगे, शादी नहीं करेंगे हम, न तुम करेगी हमसे, प्रेम ही आधार होगा, इस शादी से कोटि गुण हम लोग इसका रसा साधन करेंगे, और अंत में तुम्हारे इस ऋण का बदला देने के लिए ये तुम हमारी इस राजभवन में रह करके पूजा करते हो, मैं भी तुम्हारी पूजा अपने हृदय में रख करके करना चाहूंगा। मैंने तुमको राजभवन से निकाल करके वन में छोड़ा है और मैं उस जन्म में मैं भी वृंदावन को तुम्हारे यहाँ छोड़ करके मैं चला जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा, समुद्र के किनारे कहीं चला जाऊंगा और वहीं से मैं तुम्हारी चिंता और आराधना करूंगा। किंतु लोक मर्यादा के कारण मैं तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकूंगा और न तुम घर में बैठे हुए हमारी मूर्ति की पूजा कर सके, दोनों विरह में तड़फे। उस समय भी तुम्हारे ऋण को मैं नहीं चुका सकूंगा, किंतु तीसरे जन्म में जबकि मैं जन्म लूंगा गौरव के रूप में और तुम विष्णु प्रिया के रूप में आएगी, तो मैं जिस समय छोड़ करके चला जाऊंगा उस समय मैं खुद ही अपनी मूर्ति बना करके तुम्हारे पास भिजवा दूंगा और तुम उस मूर्ति को लेकर के पूजा करेगी। इस प्रकार से जो मैं पूजा करता था अब तुम पूजा करेगी हमारी, और मैं वहां पर रह करके कृष्ण कृष्ण कर करके जगत को रुलाऊंगा और रोऊंगा। इस तरह से इन लीलाओं का इसमें कुछ रामचंद्र जी के साथ लीला से कृष्ण की लीला का और कृष्ण लीला से महाप्रभु जी लीलाओं का परस्पर संबंध है। इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना बहुत बार अपना रूप दिखलाया, इन तीनों रूपों में ही अपने को दिखलाया, षड्भुज रूप में, यहाँ पर भी कोई षड्भुज रूप होगा, ये देख लो षड्भुज रूप दिखला रहे हैं नहीं? ये रामचंद्र के रूप में धनुष और बाण, कृष्ण के रूप में बंसी और महाप्रभु जी के रूप में दंड मंडल। इस प्रकार से विरह की लीलाएं ये रामचंद्र जी करते हैं, बहुत ही करुण लीला है। संक्षेप में सुनाया, अरे सहस्त्र कोटि जन्मों में या वर्षों में शेषनाग अपने सहस्त्र मुखों से रामचंद्र जी की इन लीलाओं का वर्णन करने में असमर्थ है। हम लोगों तो 5 मिनट में उनकी लीला समाप्त हो गई, तो 5 मिनट में एक जगह कहीं पर हो रही थी रामलीला, किसके उपलक्ष्य में, एक लड़के की शादी के उपलक्ष्य में 1000 रुपया देकर के रामायण का गान करने वाले को उन्होंने बुलाया कि रामायण का यहाँ पर गान होगा, किंतु वो लोग आ गए बन करके सब अपना रख करके और केवल गान करने वाले थे, किंतु विवाह की साइत लगन अब बीती जा रही है। जब उन्होंने आरंभ किया तो मैया आकर के पिताजी उस लड़के के करें, अरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो उसको न्यौछावर इत्यादि पहले ही दे दिया, अब जल्दी करो नहीं तो अब समय नहीं। तो अंत में वो क्या कहता है, ऐतो बलि हनुमान हे कलम फदीला और ओ पार हईते सीता को, समझा ये बंगला में है। ऐसा करके हनुमान जी ने एक कुदा और समुद्र के उस पार गए और सीता को लेकर के इस पार में चले गए। इति रामायणम, यही रामायण। उसी प्रकार से हम लोगों ने रामायण को समाप्त किया और आगे का चित्र आप लोग आनंद के साथ में सुन। गौर प्रमानंदे बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग हनुमान की, लक्ष्मण लाल की, भरत लाल की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महाराज दशरथ की जय, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी देवी की जय, अयोध्या धाम की जय, राम भक्त की जय। गौर प्रमानंदे
ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरतिशे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो, भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्त्वास्वकामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना पिण्डे नमस्ते चरणारविन्दं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान कृष्ण। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय त्वं नैव माम चरणं।
से हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हम लोगों के श्रीमद् भागवत कथा आज 5 दिवस पूरा करके 6ठे दिन में पहुंच रही है। उस तरह से जो लोग सप्ताह करते हैं उसमें भी वो 5 दिन 9वें स्कंद तक लगाते हैं और 1 दिन 10वें स्कंद। हम लोग इस भगवती कथा में 4 दिन 5 दिन उधर लगाया, अब 2 3 4 5 6 5 माने 4 5 दिन दशम स्कंद की कथाओं में लगाएंगे, 1 दिन नौम स्कंद की कथा होगी। आज दशम स्कंद हम लोग आरंभ करेंगे। परीक्षित महाराज जी पांच दिन की कथाएं बिना पानी पिए, बिना खाए, बिना कुछ पिए, बिना निद्रा के निरंतर सुनते रहे। हमारे रसिक सुखदेव गोस्वामी जी ने बस 2-1 श्लोकों में 9वें स्कंद में कृष्ण लीला का वर्णन कर दिया और उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसको दशम स्कंद की कथाओं को विस्तृत रूप में सुनने की इच्छा अभिलाषा है या नहीं, इसलिए 1 श्लोक में ही कृष्ण की ललित लीलाओं को वर्णन कर दिया। परीक्षित महाराज ने उस कथा को सुन करके उनसे निवेदन किया, आपने सूर्य और चंद्र वंश के बड़े बड़े राजाओं की भी बातें कथा सुनाई और 1 श्लोक में ही आपने कृष्ण चरित्र सुना दिया, मैं जानना चाहता हूं कि कृष्ण जदुवंश में अवतीर्ण होकर के कौन कौन सी लीलाएं की। हंसेन सह मैंने अपने अंश बलदेव के साथ, तो बलदेव कृष्ण हो गए पूर्ण और बलदेव जी हो गए अंश, अंशेन सह कहे नहीं अंश भी अनंत है, उनका नाम क्या है अनंत, इसलिए ऐसा मत समझो ये भगवान का अंश छोटा हो जाता है थोड़ा हो जाता है, पूर्णमिदम पूर्णम मदह पूर्णम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य एव पूर्णम आदाय पूर्णमयोशि। भगवान में से जो अवतार निकलते हैं वो भी पूर्ण ही होते हैं, अंश कोई नहीं, इसलिए बलदेव जी को अंश के साथ में कहा। इसका ये तात्पर्य नहीं कि वो खंड कोई अंश हैं, वो भी अखंड हैं, इस चीज को समझना चाहिए। और उन्होंने जो लीलाएं कही उसका पूर्ण रूप में वर्णन संभव नहीं है, कृष्ण भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, इसलिए अंश में ही उनकी कथाएं सुनाई। किंतु अंश में भी हो किंतु प्रस्फुटित रूप में उनकी कथाओं का होना चाहिए। प्रस्फुटित कैसे होगा, उनके परिकरों के सहित में उनकी जो लीलाएं हैं वो होनी चाहिए। परिकरों में उनके सखा लोग परिकर हैं, दास लोग परिकर हैं, माता पिता परिकर हैं, गोपियां भी परिकर हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ परिकर कौन है, गोपियां, और उनमें भी श्रीमती जी उनकी उनके अंग ही माने वही हैं, कृष्ण ही हैं वो। दाहिना अंग कहलाया कृष्ण और बाया अंग कहलाता है श्रीमती राधा, कोई अंतर नहीं, शक्ति शक्ति मतो रभेद। इसलिए उनकी समस्त लीलाओं का वर्णन करें। मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में चले गए, गोकुल में कुछ वर्षों तक लीला की, फिर मथुरा में आए, मथुरा से फिर द्वारका चले गए। इन लीलाओं को और इनके रहस्यों को भी हमको बताएं। बड़े आनंदित हुए, बल्कि परीक्षित महाराज जी ने कहा भगवान की कथाएं ही एकमात्र भव रोग की औषधि है। इस लोग निवृत्तरसई उपगीयमान बहुषधात् श्रोत्रि मनोभिरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात् उमान विरचेत बिना पशुपना। भगवान की ये लीला कथाएं भाव रोग की एकमात्र औषध है, किंतु यदि ये आपके समान संसार से निवृत्त हुए सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग हों और उनके मुख से यदि हो संसार से निवृत्त और कृष्ण की भक्ति में निर्वृत्त, निर्वृत्त माने क्या है, एकदम आनंद में पगे हुए और संसार से निवृत्त हो, तो वो कथाएं उनको प्रेम रस को भी हृदय में देने वाली होती हैं, जिससे कि कृष्ण वशीभूत हो सकते हैं। इन लीला कथाओं को केवल भक्त ही नहीं, कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी कोई भी हो, बस श्रद्धा मूल्य चाहिए, रुपया और दक्षिणा मूल्य से नहीं होगा, श्रद्धा मूल्य हो, ग्रंथ पर हो, लीला कथाओं में श्रद्धा हो, राधा कृष्ण के उनके परिकरों में कथावाचक और कथा श्रोता विशेष करके वो ऐसा भक्त होना चाहिए, संसार की तनिक भी लिप्सा नहीं हो, किसी चीज की आकांक्षा न हो, बस कृष्ण प्रेम की आकांक्षा हो, बस वो वशीभूत हो जाएंगे इन लीला कथाओं के। ऐसी लीला कथाएं कैसी हैं, औषधि जो होती है रोग की, वो तो कड़वी होती है, कुनैन है या और, कभी कभी शुगर कोटेड हो रहती हैं, किंतु फिर भी वो भीतर में जाकर के कड़वी बन जाती है, किंतु भगवान की लीला कथाएं ऐसी नहीं है। इसको मुख से नहीं पान किया जाता, इसको पान किया जाएगा कानों से पान किया जाता है, और ये कारणों के लिए अत्यंत सुंदर आस्वादपूर्ण, और यदि इन कथाओं का जो श्लोक इत्यादि हैं या कथाओं का यदि लीला रस का आस्वादन यदि करे अर्थ के समेत व्याख्या के समेत, तो वो बड़ी रसायन हो जाती है कानों के लिए और हृदय के लिए भी बड़ी रसायन हो जाती है। एक आदमी 108 बार क्या 1008 बार श्रीमद्भागवत का पूरा पारायण कर लिया पूरा, और एक व्यक्ति एक श्लोक निवृत्तरसई उपगीयमानात्, बस एक श्लोक का बड़े भाव के साथ में अर्थों का आस्वादन करते हुए और कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हुए एक श्लोक, फल किसका अधिक हुआ, एक श्लोक का। यदि हम 1008 बार भी पढ़ें हृदय में भावनाएं नहीं आई उसका अधिक मूल्य है, उसका भी वो भव सागर से तार देगी, मोक्ष दे देगी, जिसको भक्त लोग मोक्ष नाम से ही बहुत दूर रहते हैं वो मोक्ष उनको मिल जाता है। आप लोग में से कोई भी व्यक्ति मोक्ष के लिए इच्छा मत करेंगे, ये कथा सुन करके मोक्ष हो जाए। एक जगह कहते हैं कि जो लोग पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग, चाय बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग, इनकी ही आसक्ति नहीं छोड़ सकते, वो नाक में सूंघने की एक होती है ना नशी लेकर के कथा भागवत में आते हैं, उसकी भी आसक्ति नहीं छोड़ सकते, तो वो संसारिक आसक्तियों को कैसे छोड़ सकते हैं और फिर भगवान के कथा में उनको रुचि क्या होगी, साधारण सी चीज नहीं छोड़। परीक्षित महाराज ने कैसे कथा सुना, धुंधकारी ने कैसे सुना, नारद जी ने कैसे कथा सुनी, इस तरह से एक कथा सुननी चाहिए। इसलिए निवृत्त तरसई उपगी अमानात, निवृत्त संसार से निवृत्त, उपगी अमाना उपमाने गुरु समीपे, गुरु के समीप पढ़ करके व्यास के निकट, नारद के निकट पढ़कर के और निरंतर हरि कथा का चिंतन करने वाले सुखदेव गोस्वामी का या वैसे महापुरुषों के मुख से यदि सुना जाए तो भौर भौर सभी के लिए रामबाण ये कथा है। श्रद्धा से सुना जाए तो क्या, श्रद्धा से भी नहीं हो तो भी यदि सुने तो उनको अर्थ की प्राप्ति तो जरूर हो जाएगी, संसारी कामनाएं हों पूरी हो जाएंगी जरूर, और यदि कोई इच्छा नहीं रही तो मुक्ति मिल जाएगी, और भक्ति की एकांत इच्छा रही एकांतिक भक्ति मिल जाएगी, और प्रेम की स्प्रिया रहे तो प्रेम भी मिल जाएगा। यहाँ तक कि नारद इत्यादि को जिस प्रेम की लालसा तो बनी किंतु मिला नहीं, वह गोपी प्रेम भी भागवत की कथा से ही संभव पर हो सकता है। इस कथा को जो लोग नहीं सुनते हैं या अवहेला करके सुनते हैं या कथा हो रही है सो जाते हैं सो जाती हैं, उनके समान आत्मघाती जगत में और कोई नहीं है। आत्मघाती मैंने क्या, अपने आप खुदकशी कर लेते हैं, विष खा लेते हैं, रेलगाड़ी के नीचे मर जाते हैं, वो आत्मघात नहीं है। आत्मघात ये कथाओं से जो वंचित रह जाते हैं ये आत्मघात है। मनुष्य जन्म मिला था, अब कोटि कोटि जन्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं, या मनुष्य जन्म भी मिल सकता है किंतु ब्रज में मथुरा में जन्म मिलना बहुत कठिन, यह भी भगवान की कृपा से संभव हुआ है। इसलिए ऐसी कथाओं से यदि वंचित रह जाएं, हमारे यहाँ हमने कह दिया है हमारे यहाँ दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है, बस तुलसी का पत्ता बस ले आना। हमारे जितने ये बच्चे लोग बैठे हैं ये कर रहे हैं, इनको एक पैसे की दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, बस यही दक्षिणा की आवश्यकता है। आप श्रद्धा के साथ में सुनो, बस इसी की आवश्यकता है। परीक्षित महाराज जी का प्रश्न सुन करके और इस प्रकार से उन्होंने प्रशंसा की हरि कथा की और गुरु की, उनका हृदय उमड़ आया आनंद से और वो बड़े प्रेम के साथ में भागवत की कथा आरंभ की। उनके हृदय में भगवान की लीलाओं का रस एकदम उमड़ पड़ा, स्मृति में आने लगी, उसमें वो बह गए। क्या सोच देखा जी, कृष्णा अब जन्म लेने वाले हैं, कृष्ण लीला के कारण क्या है जगत में आने का, भगवत मनमंत्र में द्रोण और धरा नाम के वसु, द्रोण नाम के वसु और पत्नी उनकी धरा, द्रोण माने पर्वत, धरा माने पृथ्वी, हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की आराधना की, 10,000 वर्ष के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा जी क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कृष्ण के चरणों में हम प्रेम चाहते हैं, अहेतुकी प्रेम हम चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये वो मस्तु, वात्सल्य प्रेम की उनकी इच्छा थी। उन्होंने कहा जे ओ मस्तु। अब यहां पर एक विचारणीय बात है, ब्रह्मा जी ने कहा ये वो मस्तु, ब्रह्मा जी को वो वात्सल्य रस कृष्ण के प्रति है कि नहीं? ब्रह्मा तो अधिकृत दास इस जगत के हैं, अभी मुक्त भी नहीं है, मुक्त स्वरूपता है किंतु वस्तुतः अभी मुक्त नहीं है, तो वो ऐसा कृष्ण प्रेम उनको कैसे दे सकते हैं? वो इसलिए कि भक्त है ना, भगवान नहीं देना चाहेंगे और भक्त चाहेगा तो उनसे ग्रहण कर सकता है। उन्होंने देखा कि कृष्ण तो आने ही वाले हैं और इसके पुत्र होंगे, नंद जसोदा जी आएंगे और उनमें अंशतः मिलकर के वात्सल्य रस का आस्वादन करें, इसलिए जानते थे, इसलिए उन्होंने उनको कह दिया एवो मस्त। एक कारण यह था, दूसरा कारण प्रश्नी और सुतपा, ये दो व्यक्ति वैवस्वत मनु के या किसके पुत्र थे, उन लोगों ने तपस्या घोर की, आराधना भगवान की। उनकी आराधना से भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के उनके सामने आए। उन्होंने कहा वर मांगो। दोनों ने मिल करके विचार किया और कहा कि आप ही के समान हमको पुत्र हो। नहीं, ये मेरे समान तो और कोई है नहीं, तो मुझको ही आना पड़ेगा। ठीक, उनको वर दे दिया। वो एक कारण, वामन अवतार में जबकि उन्होंने अपने पैर से, जबकि वो आए बलि को छलने के लिए, एक छोटी सी छतरिया लगा दिया बांस का, पैरों में खड़ा हूं, बगल में पोथी, बटुक का वेश धारण करके और उनकी राजसभा में आए। बड़ा उनके अंगों से तेज निकल रहा था, बौने तो थे ही, अभी तो गर्भ से निकल करके और वहां से आए थे। जब सभा में बैठे सब लोग वहां पर थे, बलि महाराज के सब पस्त परिकर के लोग वहां पर, उनकी स्त्री और कन्या भी थी, कन्या का नाम रत्नमाला। उनके रूप को देख करके मुग्ध हो गई, बोली जैसे ऐसा ही बेटा, ये हमारा बेटा होता और अपनी गोदी में लेकर के इसको हम स्तन पिलाता। भगवान तो कल्पतरु, वांछा कल्पतरु हैं, मुख से कुछ नहीं कहा किंतु उसके उसको कह दिया एवो मस्तु, मन ही मन में कह दिया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद में भयंकर रूप धारण किया, पृथ्वी को एक डग से माप लिया, दूसरे को ब्रह्मलोक तक और तीसरे से उनको भी माप लिया और उनको बांध करके और वहीं पर छोड़ दिया। उस समय देख करके उसको बड़ा भारी क्रोध आया, ये लड़का है किंतु बड़ा दुष्ट लड़का है, मैं इसको दूध पिलाऊंगी, मैं इसको विष पिला करके इसको मार डालूंगी। बड़ी विकराल रूप धारण करके, दैत्य की तो लड़की थी ही, बस उनको मारने के लिए दौड़ी बामनदेव को। बलि महाराज ने उसको पकड़ लिए, तो उसकी एक ही इच्छा थी जो मैं इसको विष पिलाऊंगी। प्रभु ने कहा ये वो मस्तु, ऐसा भी हो, दोनों को उसको कर दी, उसके लिए भी सुजोग उसको देना था। सूर्पणखा, राम और लक्ष्मण जी बैठे हैं सीता जी के साथ में पर्ण कुटीर में, बेणी बांध रखी है जटाओं की, जो जटा धनुष यहां पर है, बाण तरकस यहां। 16 वर्ष के किशोर किशोरी लक्ष्मण भी अपूर्व सुंदर रूप को देख करके मुग्ध हो गई। आई थी इन लोगों को मारने के लिए ही, किंतु रूप देखते ही मुग्ध हो गई और राम के पास में निवेदन किया, ये तो मानुषी लड़की है, मैं रावण की बहन हूं, मैं अपूर्व सुंदरी हूं, आपके समान कोई युवक नहीं, हमारे जैसा कोई युवती नहीं, मैंने आपको ही पति के रूप में वर्ण कर लिया है, अब आपके तरफ से एक बस अनुमति होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी हमारी तो ये पत्नी है ही है, मैं दूसरी पत्नी को नहीं ग्रहण कर सकता, हमारा भैया के पास में अभी कोई पत्नी नहीं है, आप चले जाए उनसे कहो। वो लक्ष्मण जी के पास में गई, कहे आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कहे तू नौकरानी बननी चाहती है, अरे तुम राजरानी होनी चाहती है, तुम राजरानी होने के लिए योग्य है, इतनी अपूर्व सुंदरी, विश्व में तुम्हारे समान कोई सुंदरी नहीं, और तुम हमारे भैया है ना, वो एक का दो क्या हजार शादी कर सकते हैं और तुम राजरानी ही बनी रहेगी, और तुम्हारे रहते हुए दूसरे से वो प्यार करेंगे, वो तो तुमको ही प्यार करेंगे। उन्होंने ठठोली की उससे बोली, सुपना ने देखा जैसे ठीक ही कहता है, ये तो सेवक है, इसकी मैं यदि स्त्री बनती हूँ तो सेविका हो जाऊंगी। फिर रामचंद्र जी के पास में गई, रामचंद्र जी ने फिर उसको वहां से लक्ष्मण जी के पास में भी उतरे। अब वो विकराल रूप धारण करके सोचा ये सीता को पहले खा जाऊं और इसके बाद में बाध्य होकर के शादी करेंगे। यह विकराल रूप देखा रामचंद्र जी ने कहा इसे दिलगी करना अच्छा नहीं है, इसको कुछ थोड़ा सा दंड देना उचित। उनका इशारा पा करके नाक और कान काट बड़ी जोर से वहां से भाग कर। राम तो वंशाकल्प तरु है ना, जब उसके उसने हृदय में अभिलाषा की राम ही को मैं पति रूप में देखूं, किंतु भोग की लालसा कुछ थी उसके अंदर में, कामना थी, और भक्ति में पहले निष्काम होकर के तब फिर भगवान की सेवा के लिए बात होनी चाहिए, तो सेवा की तो हुई नहीं, केवल काम वासना रही भगवान के प्रति। भगवान ने कहा ओ मस्तु, जो कोई आए एवो मस्तु। इसीलिए जब देखा जी मैंने इसको ग्रहण कर लिया किसी भी रूप में और इसने हमको पति के रूप में देखा है, भले ही एक मिनट के लिए हो, कामना वासना से हमारी तरफ में देखा है, इसकी भी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कह दिया एवो मस्तु, किंतु देखा जी मैंने तो इसको ग्रहण कर लिया, अब इसको कोई दूसरा ग्रहण ना करे। जब हमारी जैसे भी हो गई, एक समय मिनट के लिए भी हो गई, दूसरा कोई भी इसको ग्रहण न कर सके, इसलिए लक्ष्मण जी से इशारा किया ना कान काट लो, ये इस जन्म में उसकी कहीं दूसरी जगह शादी ना हो सके। और दूसरे जन्म में क्या किया, जब कृष्ण लीला जब हुई अवतार, उसको कुब्जा बना दिया। कुब्जा बना करके कब तक कुब्जा बनाए रखा, जबकि वो मथुरा नगरी में ना आ जाए किशोर के रूप में, और उसकी इच्छा को कुबड़ी इसलिए बनाया कि फिर कंस इत्यादि जो हैं अपनी दासी के रूप में न रख लें, इसलिए इसके प्रति किसी की भोग की कामना ही उत्पन्न न हो। इसलिए उसको मुख बड़ा सुंदर था किंतु ये बेडॉल था, नीचे के वो कुबड़ी थी, इसलिए उसकी ऊपर में किसी की कुदृष्टि नहीं गई। जब कृष्ण आए और जब थोड़े से ही रूप में उसका ये केस पकड़ लिया और पीछे से थोड़ा सा ऐसा धक्का दे दिया, परम सुंदर रमणी बन गई। कृष्ण के दुपट्टे को पकड़ लिया, कृष्ण ने कहा जी अभी घर में जा, पीछे तुम्हारी कामना करें। तो इसके लिए भी कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहां ये सब गोलोक में कृष्ण विचार कर रहे हैं वृंदावन में बैठे बैठे, कब राम की लीला समाप्त होने के बाद में वहां पर ये विचार कर रहे हैं। और क्या विचार किया, मैं राम के रूप में जब जनकपुर में गया उस समय सीता तो हमारे रूप में मुग्ध ही भी हो गई, साथ साथ में जितनी भी राजकुमारियां थीं मन से अपने को और हृदय और आत्मा से अपने को हमारे चरणों में निवेदन और बोली राम ही हमारे पति हैं। तो रामचंद्र जी इसको कैसे नकार सकते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए इस रूप में तो नहीं, अच्छा ठीक है मैं जब कृष्ण के रूप में आऊंगा उस तब सब तुम लोगों को अपनी प्रियतमाओं के रूप में गोपियों के रूप में ग्रहण करो। अब वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं जे कब मैं आऊं। इसके बाद में रामचंद्र जी ने जबकि सीता के अभाव में सुवर्ण सीता की स्थापना की, एक दो नहीं न जाने कितनी स्वर्ण प्रतिमाएं प्रतिवर्ष होती थी एक एक, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती थी, सब जीवित के समान हो जाती थी, किंतु वो तो एक सीता से अधिक रखेंगे नहीं, इसलिए सबकी आकांक्षा हो कि हमारे प्रियतम आप ही रहे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम लोग कृष्ण लीला में जब आऊंगा कृष्ण बन करके कृष्ण रूप में, उस समय में तुम लोगों की आकांक्षा होगी पूरी, और उस समय भी तुम राधा जी की परिकर विशेष जो परिकर हैं उस रूप में आकर के हमारी सेवा करो और उनको ग्रहण करो। दंडकारण्य में जब रामचंद्र जी पहुंचे जटाजूट से बड़े सुंदर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में, 60,000 ऋषि लोग आराधना कर रहे थे कृष्ण की गोपाल मंत्र से, किंतु कैसी आराधना थी, आराधना तो कर रहे थे जैसे हम लोग आराधना करते हैं, कभी मन उधर कभी ये, एक निष्ठ चित्त से आसक्त चित्त से नहीं करते। गोपाल मंत्र करने के लिए बैठे तो मन उधर चला जाए, उधर चला जाए। आप लोग इधर सुनिए, छोड़ दीजिए, सुनिए इधर। अरे मूल वक्ता आप सुनिए हमारे तरफ में, आप ही चित्त कर देंगे तो गड़बड़ हो जाए। बस आप हमारे तरफ में रखें। तो दंडकारण्यवासी 7000 ऋषि गोपाल मंत्र से कृष्ण की आराधना करते थे, किंतु जैसी आराधना करनी चाहिए थी तन्मय होकर के उस रूप में नहीं कर रहे थे। खाते पीते सोते उठते बैठते जब कभी हो तब कर लिया, समय मिला तो कर लिया, नहीं तो नहीं किया। उस तरह से एकाग्र चित्त होकर के नहीं। रामचंद्र जी दंडकारण्य में आए और उनके रूप की सिमिलरिटी समता दोनों की कुछ कुछ है, वो भी श्याम ये भी श्याम, वो भी बड़े सुंदर वो भी सुंदर, उनके हाथ में बंसी इनके हाथ में कुछ अंतर है, रूप में भी थोड़ा बहुत अंतर है। कृष्ण का रूप और भी अधिक, जिसको देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाते हैं। तो इस तरह से उस रूप को देख करके इनकी लालसा और जग उठी और बड़े तन्मय होकर के राम के ही से प्रार्थना करने लगे, ए प्रभु आप हमारी इस अभिलाषा को। रामचंद्र जी ने उनको उधर में क्या है भाई मेरी समझ में नहीं आता, उधर में मत देखो इधर देखो, तन्मय होकर के रामचंद्र जी से प्रार्थना की। राम उनकी मन की अभिलाषा को जान गए और उनको प्रार्थना को पूर्ण कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम लोग भी गोपी होकर के वहां पर जाएगी। और वही गोपियां ये थीं जो कि कात्यायनी इत्यादि व्रत करती थी। जो गोपियों के साथ में मिली वो तो सिद्ध हो करके उनके कषाय दूर हो गए, दोष दूर हो गए और वो रास में सम्मिलित होकर के चली गई। जिन लोगों को अपने पतियों का संग था और उनको पुत्र कलत्री इत्यादि हुए थे, पतियों से सम्मिलित हुई, वो उनके पतियों द्वारा रोक लिए गए, जोग माया ने उनको रोकवा दिया। और उन लोगों ने ध्यान में कृष्ण को लेकर के अपने हृदय में ले गई, आलिंगन किया और विरह में आतुर हो गई। उस विरह से उनके जितने कषाय दोष थे वो दूर हो गए और कृष्ण के आलिंगन से उनके जितने भी पतियों के प्रति या पतियों का उनके प्रति जो स्नेह ममता था वो सब समाप्त होकर के परम विशुद्ध होकर के एकदम राश स्थली में वो भी पके हुए आम की भांति उस रासलीला में प्रवेश किया। पका हुआ आम कैसे, जब आम पेड़ में होता है तो पकने का समय होता है तो एक ही समय नहीं पकते, तो वो परम पुष्ट हो गए हैं। अब वो पकने को हैं तो माली देखता है कि जैसे ये तो पक पक करके गिरेंगे और वो दूसरे ले जाएंगे, इसलिए सभी पेड़ों के आमों को एक साथ में तोड़ लेते हैं, नहीं वो नष्ट नहीं होंगे, वो पकेंगे, किंतु कोई आज पकेगा, कोई कल, कोई परसों, कोई तरसों, उनको लेकर के रख देते हैं, अन्न में उसको गाड़ देते हैं या किसी बोरा तोड़ा से ढक देते हैं, वो गर्मी पा करके अपने आप पक जाते हैं। तो आज जो पक गए उनको निकाल लिया और ठाकुर जी को भोग दे करके प्रसाद पाया, फिर कल के लिए जो पकेंगे उसको ले लिया, फिर परसों तरसों, इस तरह से बारी बारी से। ये रासलीला एक दिन की नहीं लीला है, एक रात की, ये तो ब्रह्म रात्रि है। इसमें न जाने कितने कितनी हजार रात्रें उसमें हैं, इसलिए उस रात्रियों के सम्मेलन में वो गोपियां धीरे 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 प्रवेश। इसके लिए कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं जी, इनकी मनोकामना को भी पूर्ण करना है। और क्या, श्रुतियों ने देखा उनकी लीलाओं को, गोपाल तापनी इत्यादि से सुना और वो श्रुति मंत्र श्रुतियां जो थी वो मुग्ध हो गई और गोपी भाव में आसक्त हो करके गोपी भाव से गोपाल मंत्र और काम गायत्री का से कृष्ण की आराधना कर ली। हजार ब्रह्मा बदल गए किंतु वो गोपी करती रही। एक ब्रह्मा के जन्म में या दो वर्ष की ये बात नहीं है, हम तो चाहते हैं कि चट रोटी और पट खा ले, ऐसा साधन नहीं है गोपी भाव। नहीं? थोड़े से साधन से वो गोपी नहीं हुई हैं। आशुतोष शंकर जी की वो दबा दिया और अर्थ मिल गया और सब हो गया, ऐसा नहीं। शंकर जी भी गोपी बनना चाहते थे किंतु नहीं हो सके, दरवाजे पर रोक दिए गए वृंदावन के। पौर्णमासी जी के सेवकियों ने उनको, गोपियों ने उनको रोक दिया। कितने वर्ष तक, हजार वर्ष तक वहीं पर खड़े रहे। इसके बाद में, हजार वर्षों के बाद में पूर्णिमा जी आई। क्या चाहता है? हाथ जोड़कर उनके चरणों में शंकर जी गिर गए। बोले जे देवी, मैं वृंदावन में प्रवेश करके कृष्ण का रास दर्शन करना। अच्छा, इस शरीर से नहीं होगा, आप जैसे हमारे ऊपर में हो कृपा करके कर दीजिए। बस उनका हाथ पकड़ा शंकर जी का और ब्रह्मकुंड में लेकर के उनको डुबा दिया और निकाला तो षोड़शी गोपी हो गए। अजय देखो, बहुत दूर से बैठना ईशान कोण में रास स्थली के, बस ईशान कोण में उनको वहां पर बैठा दिया, झाड़ियों के कुंज में छिपा दिया जिससे कि वो लोग न देख सके गोपियां। रास होने लगा किंतु आज गोपियां कह रही है आज रास में उल्लास नहीं। कृष्ण ने कहा ये आज कोई विजातीय व्यक्ति इसमें आ गया है। देखो तो गोपी का वेश बना करके ही हमारी मंडली में कोई आया, निरीक्षण किया अच्छी तरह से, देखा जो इसमें तो नहीं आया, तो खोजो तो देखो तो कहीं। खोजते खोजते झाड़ियों में एक षोड़शी मिली। पूछा